अकबर, तो इंसान उस वक्त इतना कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून, अल्लाह अकबर, और जाहिर हो जाएगा इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से जिसका वो अंदाजा भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, यानी एक तो पहली बात ये कि इंसान सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा, सब कुछ देने को, हत्ता के यानी जमीन की चीजें या खजाने, तो ठीक है अगर इंसान के पास दुनिया में भी पैसा हो तो जैसे मैंने आपको कहा हर चीज लगाने को तैयार हो जाता है अपने आप को किसी बीमारी से बचाने के लिए, या यहां तक तो समझ आती है, लेकिन सूरह मारिज में तो इससे भी ज्यादा बड़ी बात है। यबसिरूनहुम यवद्दुल इंसान कहेगा, उसको दिखाए जाएंगे, वो कहेगा अल्लाह अकबर, वो कहेगा या अल्लाह आज मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे मेरा कुंबा कबीला सारा, और जो जमीन में है, या अल्लाह इन सब को जहन्नुम में बेशक झोंक दे, या अल्लाह मुझे बस बचा ले, मुझे बस बचा ले। अल्लाह अकबर, माल इंसान को बहुत प्यारा होता है, वो भी देने को तैयार हो जाएगा। और दूसरे ये प्यारे रिश्ते, माल और औलाद को ही फितना कहा गया ना कुरान में, यही आजमाइश है ना, इन्हीं को सबसे ज्यादा कहेगा कि ये बेशक ले ले, मगर मुझे निजात दे दे, मुझे छोड़ दे या अल्लाह। अब ये माल या दुनिया में जो कुछ है ये तो अल्लाह ताला फरमाएगा अगर मैं तुम्हें दे दूं तो वो फिदिये में देने को तैयार हो, कहेगा हाँ, हालांकि उसके पास होगा कुछ भी नहीं, वहां पे तो खाली हाथ होगा, नंगे पैर, नंगे बदन, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कंगाल, उससे ज्यादा मुफलिस इंसान कभी नहीं होगा, ये उसके पास कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं, लेकिन कहेगा अगर मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं देने को तैयार। लेकिन ये तो नजर आ रहे हैं ना सामने, बेटा खड़ा है, बेटी खड़ी है, माँ बाप है, बीवी है, कुंबा कबीला सब खड़े हुए नजर आ रहे हैं ना, कहेगा या अल्लाह इन सबको डाल दे। इतना ज्यादा इंसान उस दिन डेस्परेट होगा अपने आप को बचाने के लिए। और ये जो आखिरी हिस्सा है इस आयत का, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये वो हिस्सा है जिसको बड़े हमारे जो असलाफ थे ना, ये पढ़ के परेशान हो जाते थे कि उस दिन इंसान के लिए वो कुछ जाहिर होगा अल्लाह की तरफ से जो वो तवक्को ही नहीं करता था, उसकी वो एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये हो जाएगा। यानी आप समझे ना इस बात को कि दुनिया में इंसान ने जो नेकियां की उस पे वो बड़ा खुश, बड़ा उसको मान, बड़ा उसको कॉन्फिडेंस था कि जी मैं तो वहां पे बिल्कुल ठीक हूंगा, मेरे तो कोई मसला ही नहीं, मेरे लिए मैंने तो सीधे ही बस चले जाना, देखो तो मेरे पास ये भी नेकी। लेकिन आप हमारे भी जहनों में हमारी कोई नेकियां होती हैं जो बड़ी हमें लगता है कि बस ये तो आई एम गुड, मेरे पास ये भी तो चीजें हैं, लोग तो आजकल ये भी नहीं करते, देखो ना मैं तो ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, बस इससे ही मैंने पार हो जाना, बस 5 नमाजें ही पढ़नी थी ना, ज़कात देनी थी, रोजे ना, मैं तो सारा कुछ करती हूँ। तो हमसे ने फरमाया वो जन्नत में जाएगा, तो मैं बस ठीक है, मैं मुझे क्या है फिर, मुझे क्या फिक्र हो गई, ऐसे ही ये डराते रहते हैं। लेकिन ये आयत का हिस्सा, वह बदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून, उनके सामने वो जाहिर होगा अल्लाह की तरफ से जो वो वहमो गुमान भी नहीं था उनके। क्यों? इसलिए क्योंकि इसने कभी सोचा नहीं था कि इसके अमल में कहीं इखलास की कमी है, कहीं रियाकारी आ गई, कहीं तकब्बुर आ गया, या कहीं कोई शिर्क की आमेजिश आ गई, या कोई अकीदे में या कोई उसके अमल में कहीं कोई कमी थी, और ये समझता रहा जी मैं तो बहुत अच्छा हूं। इसने तो सोचा कि मैं पार हो जाऊंगा, इसने तो कभी तवज्जो ही नहीं दी, या इसने कभी सोचा ही नहीं कि ये तो मेरे जो 7 चीजें लग गई हैं, मतलब कहीं शिर्क आ गया, कहीं बिदात आ गई, कहीं रियाकारी आ गई, कहीं कोई और ऐसा अकीदा आ गया जो अल्लाह ताला के बारे में या आखरत के बारे में या ऐसा कोई अकीदा बद अकीदा अपनी तरफ से घड़ा हुआ था वो था शामिल, कोई शिरकिया जो था या कहीं रियाकारी जो थी या कोई ऐसी चीज जैसे सारा का सारा जो भी नेक अमल था उसके ऊपर पानी फेर दिया, इस उसको तो कब तब कोई नहीं थी कि ऐसा भी कभी हो सकता। यानी कॉट विथ सरप्राइज, ये क्या हो गया, समझ रहे हैं आप, ये इतनी डरा देने वाली बात है। मोहम्मद बिन मुनकदिर जो ताबीन में से थे, मैंने एक अपने दर्स में भी इसका बताया था, तो वो रातों को कयाम किया करते थे, लंबा कयाम, तो कयाम करते करते ना सूरह जुमर की तिलावत करने लगे, तो जब पढ़ते पढ़ते यहां पे आए ना, वह बदा लहुम मिन अल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून, तो रोने शुरू हो गए। इतना रोए कि उनके घर वाले जो थे वो परेशान हो गए कि हाय ये क्या क्या बात हो गई। जब वो घर वाले जो थे ना उस जमाने के अंदर अबू हाजिम बड़े आलिम थे, उनको बुलाने के लिए गए, भैया आप आए और आके इनको कुछ तसल्ली दें, इनका तो हाल बुरा हो गया रो रो के। तो उनको बुलाया गया, वो आए, इन्होंने अपनी नमाज खत्म की, उन्होंने पूछा कि भाई क्यों आप इतना रो रही हैं, फरमाया मैंने एक आयत पढ़ी जिसने मुझे रुला दिया। तो उन्होंने पूछा कौन सी आया, तो यही बताई, तो अबू हाजिम भी जारो कतार रोने लगे कि तवक्को क्या थी, एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मेरी नेकियां बहुत हैं, मगर अपनी कमियों को ताहियों के ऊपर तवज्जो ही नहीं थी, पता ही नहीं था, ये ना हो कि इंसान सोचता कुछ रहे और वहां पे कुछ और हो जाए। वाकई ये मकाम रोने वाला है कि हमें नहीं मालूम, इसीलिए तो ये लोग डरते थे ना कि जब तक पुल सिरात से पार होके जन्नत तक नहीं पहुंच जाते, जन्नत में वही है ना उनकी बात हजरत उमर की के मेरा एक कदम जन्नत के अंदर हो और एक बाहर हो, तभी मुझे डर होगा कि कहीं ये ना हो कि मैं बाहर रह जाऊं, कि जब तक जन्नत के अंदर दाखला ना हो जाए तब तक इंसान कोई सेफ नहीं है। नहीं इंसान सोच रहा है कि जी मैं तो मरूंगा तो मेरे तो आते ही जन्नत के फरिश्ते आ जाने हैं जन्नत के कफन लेके और आगे मेरे लिए प्रोटोकॉल होगा और मेरे लिए ये खुशखबरियां हैं, और मैं तो कलमा गो हूं और कब्र का अजाब भी कुछ नहीं, मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो सब कुछ पूरी करता हूँ सही, और उधर जान निकले और उधर कुछ और हो आगे, तो क्या हाल हो। आप सोचिए ना, कुरान कहता है आमिलतुन नासिबा, वो मेहनतें कर करके थक गए होंगे, तस्ला नारन हामिया, मगर क़यामत के दिन वो आग का लुकमा बनेंगे। अब वापसी भी कुछ नहीं है कि वापस जाके ही कुछ सही कर ले, अब करें तो करें कि आप तो कुछ भी नहीं रह गया। तो ये इतनी डरा देने वाली, इसलिए वो परेशान हो जाते थे। एक था भाई मौत के वक्त ये पढ़ के रो रहे हैं, मौत का वक्त है तो वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता अल्लाह की तरफ से कौन सी हालत मेरे सामने आ जाए जिसका मैं वहमो गुमान भी ना करता हूं, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो जाए, अल्लाह हू अकबर। तो वो लोग इस चीज से कितना डरा करते थे, हमारे जैसे लोगों के पास तो खैर कुछ है ही नहीं, हम तो सोचना भी महाली लगता है कि क्या हमारे लिए कौन से पता नहीं प्रोटोकॉल होंगे, वो तो इतना करते थे, फिर वो डरते थे इस बात के ऊपर कि पता नहीं आगे ये ना हो कि मेरे वहमो गुमान में भी ना हो और कुछ और हो जाए, आगे कहीं अजाब ना खड़ा हो, फिर कौन बचाएगा। अल्लाह अकबर, हम ऐसी बातों को सोचना ही नहीं चाहते क्योंकि हम तो ना कभी डरना चाहते हैं, अपने जहन के अंदर एक काका बनाया हुआ है उसी के मुताबिक जीते हैं, जब आएगी तो देखी जाएगी बस। या कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना वो इन आयात को लेके फिर इनके ऊपर तदब्बुर करते हैं, इतना सोचते हैं, ये ना हो कि हम शॉक्ड रह जाएं कि ये हो क्या गया हमारे साथ, ये ना हो कि ऐसी चीज हमारे सामने आ जाए जो अनइमेजिनेबल हो, जिसका कभी ख्याल भी नहीं आया था। अकबर वबदालहुम सय्यातुमा कसबू, और जाहिर हो जाएगी उनके लिए वो बुरे नताएज या वो बुराइयां या वो सजाएं जो उन्होंने कमाई की, वो सजाएं भी उनके सामने जाहिर हो जाएंगी जो वो उन्होंने कमाई की थी, यानी उनके आमाल का बुरा नतीजा अपने हाथ की कमाई थी ना, वो भी जाहिर हो जाएगी, यानी जो भी कब से जाहिर हो जाएगी, जिस वक्त से ही इंसान की मौत का वक्त शुरू होता है उस वक्त से ही जाहिर होने लगती, जब से फरिश्ते लेने आते हैं तभी से पता चलना शुरू हो जाता। इसका मतलब है कि जो कमाई हम कर रहे हैं इसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ही, वो कहीं चली नहीं जाती, वो कहीं डिसअपियर नहीं हो जाती, हम तो करके भूल जाते हैं ना, वो अल्लाह ताला के हाँ भुलाई नहीं जाती, उसके तो रिकॉर्ड में है, और उसकी जब वो रिपरकशंस आएंगे, उसकी जो जो नतीजा आएगा, उसका जो उसके पीछे पलट के जो उसकी सजा आएगी, वो आज नजर नहीं आ रही, या हो सकता है आती भी हो तो कोई आके हमें बताता थोड़ी है कि ये इस चीज की सजा है, हो सकता है जो अंदर दिल में बेचैनी बेकली और एक जिंदगी के अंदर मसाइब हैं वो उन्हीं गुनाहों की वजह से हूं जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी तरफ तवज्जो ना देते हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलता, अगर वहां पे पता चलेगा सब सामने आ जाएगा। वहा कभी मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और घेर लेगा उनको जो थे वो मजाक करते, जिस चीज का वो मजाक करते थे वो चीज उनको घेर लेगी, इसी चीज का मजाक करते थे ना कि कहाँ उठाए जाएंगे कैसे होगा, लो ये हड्डियां ये उठेंगी, ये जो भुरभुरी हड्डियां ये जो मट्टी हो गई ये उठेंगी, यानी पर्दे उठ जाएंगे ना जब गैब के, तो सब चीज सामने आ जाएगी, अल्लाह के अजाबों का मजाक, बास बादुल मौत का मजाक, उस दिन के जो सजाएं हैं उनका मजाक, जहन्नुम में दर हो गए हैं, जहन्नुम के अंदर दरख्त है, लो जी दरख्त भी उगने लग गए जहन्नुम के अंदर, इंसान तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो अजाब कैसे होंगे और कितने शदीद होंगे, इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वहां देखें अल्लाह ताला बड़ा है ना, तो उसकी सजाएं भी बड़ी हैं, दुनिया में ये छोटी सी चीज हो जाती है ना, छोटी सी चीज, हम कितनी तकलीफ में आ जाते हैं, थोड़ी सी मसलन है कहीं दर्द ही हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, दांत में दर्द हो जाए, सर में दर्द हो जाए, तो कितनी तकलीफ में होते हैं, अल्लाह ताला सबको तकलीफों से महफूज रखे, लेकिन कभी दर्द हो और आप बेहाल हो रहे हो तो जरूर सोचा करें कयामत के दिन के अजाब कैसे होंगे, हम इस तकलीफ के ऊपर तो इतने तरह की चीजें हमारे पास पड़ी होती हैं, और नहीं तो हम ईआर में चले जाते हैं, अस्पताल चले जाते हैं, वो ही कोई इंजेक्शन लगा देते हैं कि जो पेन किलर होता है कि दर्द खत्म हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं दर्द को मिटाने के लिए यहाँ पर, मगर उस दर्द को मिटाने के लिए कौन सी चीज होगी, घेर लेगा उनको, इससे पता चलता है कि अब कहीं निकलना मुमकिन नहीं है, घेर लेगा उनको जो जिसका वो मजाक उड़ाती थी, यानी वो सजाएं उनको घेर लेगी, अब भाग नहीं सकते, अब इसकी दवा कोई नहीं, अब इसका मदावा कोई नहीं, अब इसको फिक्स करने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, ये तो वहमो गुमान में भी नहीं थी, आए वो वाली जो बुराई की थी इसका मुझे ये मिल जाएगा, वो जो मैंने एक मजाक उड़ाया था, वो जो मैंने एक बात कही थी, मैं तो वैसे ही कह दी थी, हदीस में आता है ना इंसान ऐसे ही मुंह से बोल देता है, और उसके इतने बुरे नताएज होते हैं, अल्लाह ताला को इतनी बुरी उसकी ये बात लगती है कि वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना लेता है, उसको पता भी नहीं है, तो उन चीजों पे इंसान कहाँ तवज्जो करता है, हाँ उसकी तवज्जो इस पे जरूरत थी कि मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, ये जरूर उस पे तवज्जो है, इन चीजों को तो सोचता भी नहीं, तो उनके सामने ऐसे हालात आएंगे जिनका उनको पता ही नहीं होगा, शायद अगर दुनिया में पता चल जाए तो इंसान कितना रोए और कितनी इस चीज के ऊपर माफी मांग ले, लेकिन टाइम इज गॉन, दैट वक्त जा चुका, अब वापसी तो है नहीं, ना तोबा है, तो फिर उनको उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हाँ कभी है, जब इंसान इस चीज के ऊपर गौर करते ना, एक-एक आयत को लेके बैठ जाए, कहाँ हम आगे चल सकते हैं अगर एक-एक आयत को लेके बैठे। हाँ कभी है, घेर लेगा उनको। अब घेरा किसका, ये कोई पुलिस का घेरा नहीं जैसे कोई निकल के मुजरिम भाग सकता। ये अल्लाह ताला की सजाएं हैं जो घेर लेंगी। जब इंसान मजाक उड़ाता है अल्लाह के दीन का, या दीन वालों का, या अल्लाह के शायर का, तब नहीं तो सोचता कि उस दिन जो मजाक उड़ाए होंगे वो ही घेर लेंगे, इनका नतीजा देखना पड़ेगा। फैजा मसल इंसान दुरुन दआना, जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है ना, पुकारता है हमें, इंसान की फितरत है। और इवन जो काफिर भी होते हैं वो भी अल्लाह अल्लाह करने शुरू हो जाते हैं, गॉड ओ माय गॉड ये कहने शुरू हो जाते हैं। गॉड का आज तक नाम नहीं लिया, लेकिन उस वक्त आ जाता है ओ माय गॉड। मुसीबत के बाद इंसान का अमूमी तौर पे यही हाल होता है। सुम्मा इज़ा खवलनाहु निअमतन मिन्ना कहला इन्नमा उतीतुहु अला इल्म, जब फिर हम उसको अता करते हैं कोई नेमत अपनी जनाब से, अपनी तरफ से, यानी नेमत अल्लाह की तरफ से आती, मिन्ना हमारी तरफ से, तो वो क्या कहता है? वो नहीं कहता कि अल्लाह की तरफ से आई है, तो क्या कहता है? मुझे तो मेरे इल्म की बिना पे दी गई है। दो मतलब है इसके, यानी पहला मतलब इल्म की बिना पे दी गई है, जैसे कि मेरे इल्म की वजह से, ठीक है। दूसरा मतलब यानी मैं डिजर्व करता था, अल्लाह ताला ने मेरे काबिलियत को देखा था, मेरे इल्म को देखा था, तो इसलिए मुझे दी है। तो दोनों माने में क्या है कि अपनी बड़ाई, मेरा इल्म, यानी इल्म से मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरी काबिलियत, मैं जो चीज हूं मेरी अपनी वजह से। जैसे बाज दफा लोग कहते हैं सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड क्या होता है भाई, यानी वो कहते हैं उसको जिसको पहले से कुछ नहीं मिला, इसने खुद ही अपनी मेहनत से सारा बनाया है, तो ये सेल्फ मेड है। मेहनतें तो बहुत लोग करते हैं, वो तो नहीं कहीं पहुंचते, ये पहुंच गया, इसका मतलब अल्लाह ने दिया है ना। लेकिन वो क्या सोचने लगता है, मेरा अपना है ये, मेरी अपनी मेहनत है जी, मेरी अपनी काबिलियत है, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया, मैंने देखा, मैं इस चीज के अंदर, मुझे बड़ा पता है, मुझे बिजनेस के गुर बहुत आते हैं, ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स क्या है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी डिग्री थी, इसकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा, ये मुझे बहुत तरीके आते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पहुंचा। कितनी दफा इंसान अपने मुंह से खुद ये कहता है। अल्लाह ताला फरमाता है जब तकलीफ थी तब तो फौरन भागे भागे आ गए, और जब नेमत का अल्लाह ताला ने मजा चखाया तो उस वक्त अल्लाह याद नहीं आता, उस वक्त अपनी काबिलियत याद आने लगती है। और ये जो लफ्ज है ना खवलना, इसका मतलब क्या है, बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी इवज के, बदले के, अपनी तरफ से अता करना। यानी ये नहीं कि तुमने कुछ किया, कोई ऐसा तुम्हारा कारनामा था जिसकी वजह से अल्लाह ताला अता कर रहा है, बड़े मेहनती या बड़े अल्लाह के, अल्लाह अल्लाह करने वाले, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से अता किया, तुम्हारी नहीं कोई काबिलियत थी, अल्लाह ने अता किया, तो तुम क्या कहना शुरू कर देते हो, बस मेरी मेरी अपनी थी। जबकि कहना क्या चाहिए, जब भी इंसान को नेमत मिले तो करना क्या चाहिए, शुक्र, शुक्र अदा ज्यादा हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अमूमी तौर पे देखे जितनी नेमतें ज्यादा है उतनी नाशुक्री ज्यादा है। देख ले आप ये नोट करें ना, आप दुनिया के अंदर आप अपने इर्द गिर्द देख लें, जिनके पास जितनी ज्यादा नेमतें नाशुक्री उतनी ज्यादा, अपने घरों के अंदर देख ले, अपने बच्चों को देख ले, उनको छोटी मोटी कोई चीज देते वो कहते ये क्या चीज आपने हमें दे दी, ये कौन सी ऐसी, आप उनको कोई गिफ्ट दे देना कोई छोटा मोटा तो वो उनके नजदीक कोई वैल्यू नहीं है उसकी। इवन आप तो इतना बच्चों को हमने पैम्पर कर दिया है कि उनको कोई खाने पीने की भी चीज आम दे दे तो उनको इसकी कोई वैल्यू ही नहीं लगती, कहते ये तो हम रोज ही खाते हैं, ये पिज्जा या आइसक्रीम है, एक वक्त होता था छोटे बच्चों को आइसक्रीम देते थे, कोई कैंडी देते थे, उनको कोई इसकी वैल्यू होती थी। अब वो कहते ये क्या, उस पे भी वो खुश नहीं होते, ना शुक्रिया ना शुक्रिया। अब बच्चों से बड़ों तक देख ले, ना शुक्री ना शुक्रिया। जितनी नेमते ज्यादा है ना शुक्री भी ज्यादा है। छोटी मोटी चीज तो अब नाक पे नहीं है चढ़ती। अब कोई बहुत ही आला कोई चीज हो तो फिर है। कोई बंदा ऐसा भी है जिसको दो वक्त की रोटी मिल जाए तो वो शुक्र अदा करता है, और कोई ऐसे हैं कि जिनको चार चार खाने भी सामने रखे हुए हैं, फ्रिज भी भरे हुए हैं, तो कहते हैं क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं खाने को, आज तो कुछ खाने को है ही नहीं। नेमत की शुक्र गुजारी हमारे अंदर खत्म होती जा रही है। नेमत की शुक्र गुजारी कैसे होती है, क्या क्या शुक्र करने का, कैसे शुक्र अदा होता है। दिल में भी माने कि अल्लाह की तरफ से, मेरी अपनी नहीं है काबिलियत, मैं डिजर्व नहीं करती थी, ये इंसान का आई डिजर्व इट। हम तो हर चीज को अपना हक समझते हैं ना, यानी खाने पीने से लेके ये आजा पैसा जितनी चीजें हैं, हम सब समझते हैं कि ये हमारा हक है। हालांकि दिल में ये होना चाहिए कि मेरा हक नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है। नंबर टू, जुबान से इसका इजहार करना कि ये अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अता कर दिया। नंबर थ्री क्या, अमल से इसका इजहार करना। अमल से कैसे इजहार करेंगे, इताअत करके अल्लाह ताला की। इताअत बढ़ती है कि नहीं, जिस वक्त की नेमत मिलती है इताअत बढ़नी चाहिए ना, बढ़ती है क्या कम हो जाती है। जिस दिन ज्यादा पेट भर के खाए उस दिन आके नमाज पढ़ने को भी दिल नहीं करता, दिल करता बस सो जाए लेट जाए। दावत से आए बहुत अच्छा खाना खाया, इतनी नेमतें मिली, हंसे बोले वापस आए, और उसके बाद क्या हालात होते हैं हमारे। शुक्रगुजारी होनी चाहिए ना, इमीडिएट क्या होना चाहिए। बात की बात तो छोड़े, उस वक्त भी एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला तूने मुझे इतनी नेमतें दी। वहां से वहां तक बुफे लगा हुआ था, इतनी डिशेस मेरे सामने, जो मर्जी खाओ जो मर्जी छोड़ो। इसके अलावा जितनी नेमतें हैं, सेहत एक नेमत है, उसकी कितनी शुक्रगुजारी हो रही है कि इताअत बढ़ जानी चाहिए, लेकिन कितनी शुक्रगुजारी होती। लेकिन हाँ, मैंने तीनों चीजें आपको बताई, इन तीनों चीजों से शुक्र बनता है। सिर्फ ये नहीं है कि हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह की मैं तस्बीह कर लेती हूँ और उसके बाद मेरी जो मर्जी आए वो मैं करूँ, अल्लाह की इताअत तो कहीं भूली भी है। ये शुक्रगुजारी नहीं है। जो देने वाला है उसके आगे झुक जाना शुक्रगुजारी है। जो मुनाइम है उसका एहसान मानना शुक्रगुजारी। जिसका एहसान होता है ना इंसान उसके आगे जुबान नहीं खोल सकता, जिसका एहसान होता है ना इंसान उसके आगे सर नहीं उठा सकता। हम तो ना एहसान मानने वाले हैं, एहसान फरामोश, ना एहसान को मानते हैं, ना हमें शुक्रगुजारी करनी आती है। सच बात, इसीलिए बातें बहुत आती हैं, बहुत बातें आती हैं, ऐसा क्यों, वो क्यों, ये क्यों, इतनी ऑब्जेक्शंस हैं। जिसका आप एहसान मानते हो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेंगे क्या, हाँ? और उसके ऊपर कहेंगे क्या कि ये क्यों और वो क्यों। तो अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो शुक्रगुजारी नाम की चीज नहीं है। शुक्रगुजारी है कि इंसान फिर उस अल्लाह ताला को भूले नहीं कभी अपनी इस जिंदगी के अंदर। शुक्रगुजारी है कि नेमतें बढ़ती जाए तो इंसान झुकता जाए। हम देखते हैं कि जिनके पास कम है वो फिर भी सबर और शुक्र के साथ रह रहे हो, जिनके पास ज्यादा है उनके मुंह गिले शिकवे करने से ही बाज नहीं आते। वो उतने ही ज्यादा हर वक्त शिकायती मोड में रहते हैं, उनको नेमते नजर ही नहीं आती। नजर आएंगी तो शुक्र अदा करेंगे ना, नजर आती ही नहीं है, ब्लाइंड है उस तरफ से। क्या नजर आता है, ये क्यों खराबी हो गई, इतनी सी भी चीज क्यों इधर से उधर हो गई, ये क्यों कमी हो गई, ऐसा क्यों हुआ, छोटा सा क्यों नुकसान हुआ। करोड़ों में 1 रुपए का नुकसान हो जाए तो वो नजर आएगा, वो करोड़ नजर नहीं आएंगे। इसी तरह हमारे पास अनगिनत नेमते जिनको हम गिन भी नहीं सकते, वो नजर नहीं आती। हाँ वो कहीं एक जो कमी है वो जरूर नजर आती है। और नाशुक्री किसको कहते हैं? तो जब नेमत नहीं होती या तकलीफ पहुंचती है बहुत पुकारता है, नेमत मिल जाती है तो उज्जब का शिकार हो जाता है, यानी खुद पसंदी का। खुद पसंदी, ये खुद पसंदी है कि मैं आई डिजर्व इट, ये खुद पसंदी कि मेरा इल्म, जैसे कानून ने कहा कि ये मुझे दिया गया मेरी अपनी काबिलियत की वजह से दिया गया, और अल्लाह ताला ने फिर उसको कैसे धंसा दिया जमीन में और खजानों समेत। और हम तो रोज कहते हैं ये मैंने किया, ये मैंने पकाया, ये मैंने बनाया, ये मैंने किया, ये मेरा हुनर है, मुझे तो शुरू से शौक था, आखिर मेहनतों से हमने कमाइयां की नहीं। बल ही फितना तू वला किन्ना अक्सर हम ला यालमून, हालांकि ये एक फितना है। फितना से मतलब क्या? फितना वो नहीं जो हम उर्दू में बोलते हैं। फितना से मतलब क्या? यानी ये तो आजमाइश है, टेस्ट है, लेकिन अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आती बात कि ये टेस्ट होता है कि अल्लाह ताला जब तकलीफ देता है तब भी आजमा रहा होता है, और जब नेमत देता है तब भी आजमा रहा होता है कि अब मेरा बंदा कहता क्या है, अब मुझे याद करता है कि नहीं, अब मुझे पहचानता है कि नहीं, कि वो मेरा एक रब है जिसने मुझे ये नेमत दी, मैं तो इस काबिल भी नहीं थी, उसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया, अल्लाह मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं कि मैं तो सजदे में भी पड़ी रहूं, तो अल्लाह तेरा मैं शुक्र नहीं अदा कर सकती। क्या ये रवैया है? या ये रवैया, हाय क्या हो गया, लुट गए मारे गए, ये हो गया वो हो गया। अल्लाह ताला हमें माफ करे, लेकिन हम सब में ना शुक्रिया है। अल्लाह ताला हमें माफ करे कि हम उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम बहुत ही कम शुक्र अदा करते, बहुत ही कम, अगर हम कर भी ले तो बहुत ही कम, हमें एहसास नहीं है जो नेमते हमारे पास है, हमें नहीं है एहसास उनका, यकीन जाने वाकई नहीं, हमें रियलाइजेशन ही नहीं है उस। ऑन टॉप ऑफ इट ये क्या, बिना इन्नमा उतीत हुआ ला इल्म है, मुझे तो मेरे इल्म की बिना पे मिला, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हर कोई अपनी अपनी गुण गा रहा है, अपनी तारीफें, अपने आप को समझना कि बस मैंने कुछ किया ही है तो फिर मिला है ना, हर एक को तो नहीं मिल जाता ना, मेरे अंदर तो कुछ होगा ही तो मिला, नहीं ये फितना है, ये आजमाइश है। कितनी दफा नेमत मिलने पे हम सोचते हैं ये एक टेस्ट है मेरा, यूं ही नेमत आती है, आपके हस्बैंड को बोनस मिले, आपके कारोबार में तरक्की हो जाए, आपको कोई खुशी मिल जाए, आप मसलन है कि आप के कोई प्रमोशन मिल जाती है आपको किसी जगह पे आप काम करते हैं, आपको अच्छा घर मिल जाता है, आप अच्छी जगह पे आपके रिश्ता हो जाता है, कितनी दफा पे ये होता है कि ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का करम है, मैं तो ये डिजर्व नहीं करती। आप देखिए बुखारी में एक रिवायत आती है बनी इसराइल की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के तीन आदमियों की ना एक कहानी बताई है, और वो हमें बहुत अच्छी तरह बताती है कि किस तरह ये चीजें हमारे लिए टेस्ट होती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में तीन आदमी थे, एक कोढ़ी था जो लेप्रसी वाला होता है पेशेंट, एक गंजा था, एक अंधा था। अल्लाह ने इन तीनों को आजमाना चाहा, एक फरिश्ते को इनकी तरफ भेजा, वो कोढ़ी के पास गया और कहने लगा तू क्या चाहता है? उसने कहा मेरा अच्छा अच्छी खाल हो जाए, स्किन अच्छी हो जाए, लोग मुझसे नफरत और कराहत करते हैं, तो मेरा मतलब मैं सही हो जाऊं ना। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेर दिया और उसके बदन का रंग अच्छा हो गया, खाल भी दुरुस्त हो गई। अब देख लें अब कितनी दफा है कि हम बीमार होते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला हमें सेहत दे देता है, शिफा दे देता है, उसके बाद हमें भूल ही जाता है कि किसी ने हमें शिफा दी, हम उसके बाद क्या कहते, डॉक्टर बहुत अच्छा था, ये दवाई बड़ी अच्छी दवाई है, इससे मुझे आराम आया, नहीं अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है, ये क्यों नहीं आता? आप जरूर किसी को बताएं, दवा का भी बता दें, डॉक्टर का भी रेफरेंस दे दें, लेकिन अल्लाह ने मुझे शिफा दी है, अल्लाह ने इस डॉक्टर के हाथ में मेरे लिए शिफा डाल दी, ये भी तो कह सकते हैं। तो वो उसका रंग अच्छा हो गया, खाल भी दुरुस्त हो गई। फरिश्ते ने पूछा, दुनिया के मालों में से कौन सा माल तुझे पसंद है? वो कहने लगा, मुझे ऊंट या गाय बैल बहुत पसंद। तो वो फरिश्ते ने उसको वो दे दिए और कहा कि तुझे इसमें बरकत हो। फिर वो गंजे के पास गया और उससे पूछा, तू क्या चाहता है? गंजा कहने लगा, अच्छे बाल होना, ये गंजापन जाता रहे, लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे मतलब बातें बनाते होंगे। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा और वो सही हो गया और बहुत अच्छे बाल निकला है। फिर फरिश्ते ने कहा, दुनिया का कौन सा माल तुझे पसंद है? वो कहने लगा, मुझे ये चीजें पसंद है, गाय बैल और गाबन गाय और ये। तो फरिश्ते ने कहा, अच्छा तुझे इसमें बरकत हो, और उसको दे दी। फिर वो फरिश्ता अंधे के पास गया, पूछा तू क्या चाहता है? वो कहने लगा, अल्लाह मेरी बीनाई मुझे फेर दे, मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उसकी आंखों पे हाथ फेरा, अल्लाह ने उसकी रोशनी वापस कर दी। और अब उसने पूछा, कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, मुझे बकरियां पसंद है ये। फरिश्ते ने उसको भी बकरियां बहुत सारी दे दी, फिर ऊंटनी और गायें भी दे दी। तो इस तरह से सब के पास चीजें होंगी। फिर ऊंटनियां गायें और ये जितनी भी इनके पास थी, गंजे के पास भी, अंधे के पास बकरियां और उसके पास ऊंट, ये सब फरिश्ते ने उनको दे दिए। फिर उसके बाद अब इनका टेस्ट शुरू होता है। फरिश्ता, अब अल्लाह ताला ने उसको भेजा कि वो अपनी उसी सूरत में और शक्ल में, जिस शक्ल में पहले आया था ना जब उसने दिया था, उसी शक्ल के अंदर वापस आया। और कोड़ी से कहने लगा, मैं एक मोहताज आदमी हूँ, मुसाफिर, मेरा सामान सब चला गया, अब मैं बगैर किसी मदद के तेरी, और बगैर किसी की मदद के तेरी इनायत के अपने मैं ठिकाने नहीं पहुंच सकता, तो तू मुझे मेरी मदद कर, मैं तुझसे अल्लाह के नाम पे सवाल करता हूँ, जिसने तेरा बदन अच्छा किया, तेरी खाल दुरुस्त की, माल दिया, मुझे एक ऊंट दे दे जिसपे मैं सवार होके वापस अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, अपने वतन चला जाऊं। वो कहने लगा, भाई मैं तो बहुत कर्जदार हूँ, बहुत आदमियों का मैंने भी देना है। फरिश्ते ने कहा, मैं जैसे तुझे पहचानता हूँ, तू कोड़ी था, सब लोग तुझसे घिन करते थे, तू मोहताज था, अल्लाह ने तुझे ये सब कुछ दिया। कोड़ी ने कहा, वाह, मैं तो बुजुर्गों के वक्त से मालदार चला आ रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा, खैर अगर तू झूठ बोलता है तो अल्लाह तुझे वैसा ही करते जैसा तू था। फिर वही फरिश्ता उसी शक्ल और सूरत में गंजे के पास गया और उससे भी वही कहा जो कोड़ी से कहा था। गंजे ने भी वैसा ही जवाब दिया जैसे कोड़ी ने दिया था, कि जी मैं तो खुद इतना वो हूँ, जैसे कोई मांगने आ जाए, पहले हम खुद के हालात हमारे ऐसे होते, फिर कोई कुछ मांग ले या कोई पूछ ले या कोई बात कह दे, आपने ये कैसे किया, तो ना जी हमें तो पहले से ही आता है, हालांकि 10 दफा हमने वो चीजें खराब की होती हैं, तो हमें खुद नहीं आता था, हमने कितनी मुश्किल से कितनी दफा फेल होने के बाद वो चीज सीखी, और उसके बाद आप कोई हमसे पूछा है तो नहीं नहीं हम क्यों बताएं, ये भी ना ले ले ये चीज, इसको भी ना आ जाए कहीं, कि हर जगह पे के करते हैं ना ये, नेमते ही है ना, चाहे वो कोई हुनर है, चाहे वो कोई इल्म है आपके पास, चाहे कोई तरकीब है आपके पास, चाहे आपके पास पैसा है, चाहे आपके पास कोई भी एक बात है जो नफा पहुंचाने वाली है। अच्छा, वो अब इसके पास गया गंजे के पास, तो उसने भी ऐसा कहा, तो फरिश्ते ने उसको भी यही कहा कि अगर तू झूठ बोलता है ना तो अल्लाह तुझे भी वैसा ही करते जैसे पहले तू था। उन्होंने उससे कहा था ना, मैं तो हमेशा से ऐसे था, लो मैं कब भी ऐसे था। अब अंधे के पास गया, उससे कहने लगा, मैं एक मोहताज हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरे पास सामान नहीं है, अब बगैर अल्लाह की मदद के और तेरी तवज्जो के मैं अपने वतन नहीं पहुंच सकता, मैं तुझे अल्लाह का नाम देके वास्ता देके कहता हूँ कि जिसने तेरी आंखें रोशन की, एक बकरी दे दे जिससे मैं सफर में अपने ठिकाने तक पहुंच जाऊँ। अंधा ये सुनकर कहने लगा, बेशक मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे बिनाई दी, मोहताज था, माल दिया, तू उसके नाम पे मांगता है तो जो तेरा जी चाहे तू ले ले, मैं आज तुझको कुछ नहीं कहूंगा, अल्लाह के नाम पर तू जो ले लेगा तुझ पे कोई उसके ऊपर मैं सवाल नहीं करूंगा। फरिश्ता कहने लगा, मैं मोहताज नहीं हूं, अपनी बकरियां रहने दे, अल्लाह ने तुम तीनों को आजमाया था और तुझसे खुश हुआ और तेरे दोनों साथियों से नाराज हुआ। अब ये देखिए कहानी हमारे लिए कितनी बड़ी इबरत की कहानी है ना ये बुखारी में, कि हमारे पास कितने ऐसे मौके आते हैं, कोई फरिश्ता तो आ नहीं रहा, लेकिन अल्लाह ताला इस तरह अपने कोई बंदे को मोहताज को भेज देता है या जिसको जरूरत होती है भेज देता है। फिर हम आगे से क्या कहते हैं, लो जी हमारे तो जद्दी पुश्ती, हमारे पास ये जायदादें चल रही हैं, हम तो इतने अमीर पहले से हैं, हमारे पास तो इतना कुछ है, कहाँ हमने तो कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं देखा, हम तो ये थे, हम तो वो थे, कितनी अपनी बड़ाइयां बयान करते हैं, मुझे तो ये आता था, बचपन से तो मैं ऐसी थी, अपनी खूबियां ही बयान करते रहना। अल्लाह हू अकबर। हाँ, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते कि यह आजमाइश है, तो इसका मतलब है कि हमें इन अक्सरियत में शामिल नहीं होना जो ये नहीं जानते। हम तो इल्म ले रहे हैं ना, तो अब हमें पता होना चाहिए कि जब भी अल्लाह हमें कोई नेमत देता है, तो अल्लाह ताला की वो नेमत हमारे लिए एक इम्तिहान है, और उस इम्तिहान पे हमने अल्लाह की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ना है। और अगर नेमते मिले और इंसान वो उल्टा शुक्रगुजारी छोड़ के नाशुक्री में और अल्लाह की नाफरमानी में गुनाहों में आगे बढ़ने लगता है ना, तो अल्लाह ताला की फिर ढील होती है, फिर अल्लाह ताला पकड़ता है तो बहुत सख्त पकड़ता है, जैसे इन दोनों को पकड़ा जो इस कहानी में आपको बताएगा। हिदायत हमें अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون